दृष्टि से सृष्टि सम्मेलन में आपका स्वागत है। आपके हृदय, मन और रोजमर्रा के जीवन में स्वर्णिम युग को जागृत करने के लिए आध्यात्मिक विवेक और कहानियाँ। हेलो चंद्रु बहन, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम दृष्टि से सृष्टि में। आशा है आप ठीक होंगी। आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ओम शांति। चंद्रु बहन, ओम शांति। यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। एरिक भाई, आपका स्वागत है। हम स्वर्णिम युग के द्वार तक पहुँचने वाले हैं, जो कि बहुत सुंदर विचार है कि सबसे पहले हम स्वर्णिम युग देखना चाहेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम आपसे सुन पाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके पास बहुत भरपूर अनुभव है और एक बहुत लंबा ब्राह्मण जीवन आपने जिया है, जो कि अनेक अनुभवों से भरपूर है। तो सबसे पहले आपके व्यक्तिगत अनुभवों से सुनना चाहेंगे, अगर आप याद कर पाए। आपके शुरुआती दिनों में जब आप ज्ञान में आए, तो आपका स्वर्णिम युग का पहला अनुभव क्या था और इस ज्ञान को आपने कैसे स्वीकार किया? आपने इसे कैसे देखा, कैसे अनुभव किया? इस प्रकार के स्वर्णिम युग के विचार का आपके लिए क्या महत्व था? चंद्रु बहन, थैंक यू, ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत साल पहले, 50 साल पहले मैंने सभी लेसन्स को लिया था और उस 7 दिन के कोर्स में हम आत्मा के बारे में सुनते हैं, परमात्मा के बारे में सुनते हैं, फिर सृष्टि चक्र का लेसन आता है और वहीं पर सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन बातों का सिद्धांत के बारे में बताया जाता है, फिर कलयुग और संगम युग, और फिर बताया जाता है कि स्वर्णिम युग कैसा होगा, त्रेता युग कैसा होगा, द्वापर युग कैसा होगा और कलयुग कैसा होगा, समय का स्वभाव कैसा है। उस समय मेरी किशोर अवस्था की शुरुआत थी और एक ड्रामा की तरह से स्वर्णिम युग को एक स्टेज पर विजुअलाइज किया। मेरे लिए अधिक रोचक विनाश की बात थी, सितारों का नीचे गिरना, बॉम्ब्स और नदियों में बाढ़ का आना, वो सब कुछ हो रहा था, और युद्ध, तो वो सब कुछ हो रहा था, जैसे कि एक ड्रामा, एक मूवी की तरह था। और उसके बाद स्वर्णिम युग, और स्वर्णिम युग भी एक ड्रामा की तरह था, और राधे कृष्ण खेल रहे हैं, बांसुरी और ये सब बातें, गोपियां, और वो सारे स्वर्णिम आभूषण पहने हुए हैं, सोने के महल, बड़े बड़े सिंहासन, फव्वारे और मोर, तो इस प्रकार बहुत बहुत नाटकीय रूप का दर्शन होता था। तो मैं खुश होती थी, अच्छा हम वहाँ पर जाएंगे और हम स्वर्णिम महलों में रहेंगे, जो कि हीरे जवाहरात से जड़ित होंगे। और धीरे धीरे मैंने समझना आरंभ किया कि सचमुच स्वर्णिम युग क्या है और स्वर्णिम युग का वास्तव में अर्थ क्या है और बाबा हमें इस बारे में क्या बताते हैं। शुरुआत में बहुत रोमांचक था और कभी कभी हम मधुबन में उस प्रकार के ड्रेस पहनते थे, ताज पहनते थे, डांस करते थे, गाते थे, रास करते थे, तो वो बहुत मनोरंजक था। स्वर्णिम युग के बारे में कोई गंभीरता नहीं थी।
So, but in the beginning, it was like very exciting thing. You and we used to wear time to time in Madhuban the dress, the crown, and a sing and a dance, gopis, raskarta, and all that. So it was very entertaining thing. There is no seriousness about golden age and.
एरिक भाई, क्या आपको कोई साक्षात्कार भी हुआ था या आप ट्रांस में जाते थे? चंद्रु बहन, नहीं, मैं कभी ट्रांस में नहीं गई, लेकिन शरीर से बाहर निकलने का अनुभव एक बार हुआ था। मैं शरीर से बिल्कुल अलग हो गई थी, और जैसे कि आप इस संसार से बिल्कुल परे हो गए हो, आप खाओ तो ठीक है, ना खाओ तो भी ठीक है, और वो 3 दिन तक चला। आप खाओ, नहीं खाओ, आप हंसो, आप सो नहीं सो, अगर कोई आपका अपमान करता है तो इसका कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ता, वो एक प्रकार से अलग हो जाने का, दूर हो जाने का फरिश्ता रूप का अनुभव था। बहुत हल्कापन, सहजता का अनुभव होता है और आप मधुबन में जब चलते हैं तो बस ऐसे उड़ते हुए, तैरते हुए चलते हैं। तो इस प्रकार का एक अनुभव मुझे हुआ और उस अनुभव के कारण मुझे बहुत गहरा मेडिटेशन का अनुभव भी हुआ और उस अनुभव ने मुझे बदल दिया। लेकिन इतने सालों में वैसा अनुभव फिर कभी नहीं हुआ।
Into that experience, which never happened after that many years.
Eric भाई, जैसे बाबा कहते थे कि शुरुआत के दिनों में कई लोग सिर्फ ओम की ध्वनि से ही ट्रांस में चले जाते थे, बस जैसे ओम ध्वनि का उच्चारण किया और कई दिनों तक ट्रांस में चले जाते थे और वो स्वर्णिम युग का अनुभव करते थे, कृष्णा का अनुभव करते थे। जैसे दादी गुलजार ट्रांस में गई और वहाँ की भाषा के बारे में बता रही थी, क्या स्वर्णिम युग आपके लिए विशेष था? जैसे वहाँ का विस्तृत वर्णन कि वहाँ की भाषा कैसी थी, आंखें और वहाँ के ताज, और मुझे आशा है कि वहाँ ताज पर कोई प्राइस टैग नहीं होता। हाँ, ड्रेस पर प्राइस टैग होता होगा। तो आपको इस प्रकार का कोई विस्तृत वर्णन याद आ रहा है जिसने आपको कुछ रोमांचक अनुभव दिया हो? चंद्रु बहन, ऐसा कुछ नहीं था, बस वह सुंदरता दिखलाता है, लेकिन आप इस बात पर ध्यान नहीं देते कि आपने उसे पहना हुआ है। आपकी स्वयं की सुंदरता, दूसरों की सुंदरता, आप कुछ खराब नहीं देखते हैं, कुछ भी सांसारिक देखने में नहीं आता है। और जो लोग हैं वो कलयुगी सांसारिक लोगों से बिल्कुल परे होते हैं। वह बहुत ही मीठा, बहुत ही दूसरे प्रकार का एक संसार होता है। ऐसा नहीं कि किसी विशेष प्रकार से मैंने उन्हें देखा या उनकी आंखों पर ध्यान दिया। इसके बारे में एक बात कह सकती हूँ कि बहुत प्राकृतिक था, सब कुछ बहुत नैसर्गिक था। जो आप अपने बारे में महसूस करते हैं दूसरों को भी इसी प्रकार से देखते हैं और वही महसूस करते हैं। इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि वे कौन लोग हैं, कहां से आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वे गुजराती हैं या भारत के किसी और हिस्से से आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। एरिक भाई, लेकिन आपका ये अनुभव इतने वर्षों में किस प्रकार विकसित हुआ है? क्योंकि मैं जानता हूँ शुरुआत में हम सभी उस स्वर्णिम युग से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। स्वर्णिम युग की तस्वीरें और स्वर्णिम युग का भौतिक स्वरूप, और बाबा जिस प्रकार से स्वर्णिम युग के बारे में बताते हैं कि आप सीधा पेड़ से आम का रस पिएंगे और शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएंगे, तो इतने वर्षों में आपका अनुभव किस प्रकार बदला है? मैं कहूंगा कि भौतिक से आत्मिक स्वरूप की ओर, या फिर कहेंगे मूल्यों पर आधारित या संबंधों पर आधारित। तो इतने वर्षों में आपका अनुभव किस प्रकार से विकसित हुआ है? चंद्रु बहन, जैसे जैसे बाबा के साथ मैं अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ती चली गई और भारत छोड़कर पश्चिमी दुनिया में आ गई, तो मैंने स्वर्णिम युग के बारे में सचमुच सोचना आरंभ किया कि आखिर स्वर्णिम युग क्या है, सोना क्या है, उसकी चमक, उसकी मजबूती और सांचे में उसका ढल जाना। तो इस प्रकार स्वर्णिम युग के बारे में सोचना आरंभ किया, शांति, प्रेम, खुशी, और आप किसी भी प्रकार की नकारात्मकता वहां नहीं देखते हैं, तो यही स्वर्णिम युग है। अगर आप अपने आसपास हरेक में भगवान देखते हैं तो आपके आसपास स्वर्णिम युग है, और आप उस वातावरण को बना देते हैं तो आपके आसपास स्वर्णिम युग है। बेशक आप बहुत ही सादा भोजन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप याद करेंगे कि बाबा ने आपको शूबी रस दिया है, अमृत दिया है, और सीधे पेड़ से आपको आम मिला है, और आप उसका आनंद उठा रहे हैं और आपकी दवाइयाँ भी सूक्ष्म वतन से आ रही हैं और आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। मेरे लिए साक्षात्कार से अधिक यह एक भावना है, स्वर्णिम युग की भावना, क्योंकि आज के जमाने में जो घटनाएं घट रही हैं, हिंसा, मारकाट, वातावरण में समस्या और हर बात हर जगह अति में चली गई है। इन सब बातों के होते हुए भी मैं अपने आसपास स्वर्णिम युग को उत्पन्न करने की बात सोचती हूँ और अपने भीतर भी देखती हूँ, मेरी दृष्टि क्या है, मेरी भावनाएं कैसी हैं, मेरा अनुभव कैसा है, और यही मैं अपने मन के भीतर उत्पन्न करती हूँ। कुछ भी खराब बातें मुझे नहीं चाहिए। भौतिक रूप से भी मुझे कोई अस्त व्यस्त चीजें पसंद नहीं है। अगर विधि पूर्वक नहीं है, सुंदर नहीं है, तो इस प्रकार के संस्कार हैं जो हम धीरे धीरे विकसित करते हैं और इस प्रकार से मैं अभ्यास करती हूँ। अगर आपकी वस्तुएं अस्त व्यस्त हैं, तो इसका अर्थ है आपके विचार भी अस्त व्यस्त हैं। अगर आपका मन साहसी नहीं है, तो इसका अर्थ है आप ज्ञानवर्धक, दीप्तिमान और उज्जवल विचार उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, तो आप फिर स्वर्णिम युग में नहीं हैं। और अगर मैं स्वर्णिम युग में उपस्थित होना चाहती हूँ, तो ये सब मैं करती हूँ और यही व्यवहारिक स्तर पर मेरा अभ्यास है। नहीं तो ज्ञान के हिसाब से हाँ, हम स्वर्णिम युग रच रहे हैं, और अगर हम एक आत्मा के हृदय को भी छू लेते हैं और उसके विचारों और वृत्ति में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ जाता है, तो हम अपने स्वर्णिम युग के जमा के खाते को बढ़ा रहे हैं। हम सुना करते थे, जितनी सेवा आप करते हो उतनी ही अधिक आप प्रजा बनाते हो। तो जितने अधिक स्टूडेंट्स को आप ज्ञान देते हैं, जितने लोगों को आप ज्ञान देते हैं, वो आपकी प्रजा बन जाएंगे। लेकिन असल बात यह नहीं है कि अगर आपने अधिक लोगों को ज्ञान दिया तो वो आपकी प्रजा बन जाएंगे, नहीं, और आप बहुत बड़े बड़े राजा बन जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इतने सालों में मेरी समझ थोड़ी बदली है। ऐसे नहीं है कि आप इस प्रकार से अपनी प्रजा रचते हैं। प्रजा तो अपने आप बनती जाती है। हम बड़े महाराजा बनते हैं अपने अंदर की शक्ति से, और ये गिरावट की ओर भी आता है। प्रत्येक राजा का पतन भी होता है। स्वतः ही हम परिस्थितियों को छोड़ देते हैं। आपका महल, सफाई, पवित्रता, आपके फव्वारे, आपके गाते हुए पंछी, इन सभी का अपने आप पतन हो जाता है। इसमें आपको आपके आध्यात्मिक और भौतिक दोनों आयामों को मिलाना पड़ता है। क्या आपको ये बातें ठीक लग रही हैं? एरिक भाई, हाँ बिल्कुल, आप बात कर रहे हैं कि किस प्रकार इतने सालों में आपकी समझ बदली है, और मुझे लगता है कि हम में से बहुतों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बड़ी बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि यज्ञ के आरंभ में कुछ अलग प्रकार की समझ थी, तो इतने वर्षों में वो समझ अभी बदलती जा रही है। जैसे भगवान के बारे में समझ, उसके कार्यों के बारे में समझ, सब बदल गया है। स्वर्णिम युग को लेकर के अपनी सहज भोली भाली समझ और कल्पना करके हम बहुत रोमांचित हो उठते थे, लेकिन अब हम जान गए हैं कि स्वर्णिम युग में जाने के लिए, जैसा कि अभी आप शेयर कर रहे थे, हमें कुछ वृत्तियों को बदलना होगा, कुछ संस्कारों को बदलना होगा। लेकिन आपको अभी क्या लगता है कि स्वर्णिम युग में जाने के लिए आपके अंदर कौन सी एक बात की खिंचाव होता है कि हमें इस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए? आपके मन में क्या बात आती है कि आप स्वर्णिम युग के बारे में तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप सोचते हैं कि मुझे अब घर जाना है? कौन से विशेष विचार आपके मन में हैं जो आपको स्वर्णिम युग में पहुंचाएंगे? चंद्रू बहन, मैं परमधाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सचमुच में स्वर्णिम युग में जाने का पुरुषार्थ अवश्य कर रही हूँ। मैं अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार कर रही हूँ, ताकि मैं उसके साथ मेल खा सकूँ, क्योंकि अगर आप तैयार नहीं हैं, तो आपको वहाँ पर एक सांस्कृतिक धक्का लगेगा। आपको याद होगा कि जब पश्चिमी लोग जब भारत में जाते हैं, तो उनको एक सांस्कृतिक आघात लगता है, और इसी प्रकार स्वर्णिम युग में तो वहाँ तो बिल्कुल पूरी तरह से संस्कृति भी स्वर्णिम युग होगी। अगर मैं अब तैयार नहीं हूँ तो मुझे बहुत बड़ा धक्का लगेगा। जैसे श्री कृष्ण का जन्म एक जेल में हुआ था और फिर एक नदी में जो कि उफान पर थी, उस नदी से गुजरते हुए उसको दूसरी तरफ पहुंचाया गया था, तो ये बहुत बड़ा आघात लगता है। और आपको पता है कि फिर बहुत सारे राक्षसों ने उसको दुखी किया। इस प्रकार से बहुत सारी कहानियां हैं, तो मुझे मालूम है कि वो क्या है, क्योंकि मैं उन कहानियों के साथ ही बड़ी हुई हूँ। तो उसी प्रकार से वो जेल या उफान में आई हुई नदी, उसे मुझे कौन निकालेगा। और इस प्रकार कहानी में ये बात भी आती है कि जो नदी है वो चाहती थी कि वो श्री कृष्णा के पैरों को छुए, और कृष्णा एक बच्चा था और धीरे धीरे उसको समझ में आया कि नदी ये करना चाहती है। फिर उसने अपने पैर को उस टोकरी से बाहर निकाला जो उसके पिता ने अपने सिर पर रखी थी, और फिर पानी ने उसके पैरों को छुआ और एक तरफ हो गया और नीचे चला गया और उन्होंने नदी पार की। तो ये सब क्या है? तो ये वो बातें हैं जो आपको संपूर्ण करनी है, ये वो कर्तव्य हैं जो आपको निभाने हैं। आपके जो भक्त हैं द्वापर युग से, उनकी इच्छाओं की पूर्ति आपको करनी है। तो उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के बाद ही आप नदी पार करेंगे। तो दूसरी तरफ आपका प्रेम आपका इंतजार कर रहा है, आपकी माँ आपका इंतजार कर रही है। गोकुल गांव का एक वातावरण है जहाँ लोग बहुत मासूम हैं, बहुत पवित्र, बहुत भोले भाले, सादे और पवित्र। वो लोग भी आपका इंतजार कर रहे थे। ऐसे मुझे अपने अंदर वो बात उत्पन्न करनी है कि कैसे मैं इन कर्तव्यों की पूर्ति करूं। दादी जानकी कई बार कहती हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि दादी आप इतना कठिन कार्य कैसे करती हैं, तो दादी कहती है ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी जिम्मेवारी है। तो जब तक मैंने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण नहीं किया है, भगवान के प्रति उनकी जो भावना है उसको पूर्ण नहीं किया है, अपनी जिम्मेवारियों को नहीं निभाया है, तो मैं तैयार नहीं हूँ, तो मैं तैयार नहीं हूँ उस नदी को पार करने के लिए। तो दो बातें हैं, एक तो मेरे स्वयं के लिए कि मैं स्वयं को तैयार करूँ, पवित्रता, सुंदरता, सफाई, इस प्रकार। और दूसरी बात है मेरी संसार के प्रति जिम्मेवारी, उस संसार को बदलने की जिम्मेवारी। फिर अपनी सब बुराइयां या जो दैत्य हैं, असुर भीतर बैठे हैं, उन पर विजय प्राप्त करूं। मैं संसार के सभी असुरों को समाप्त नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने भीतर बैठे दैत्य असुरों का नाश अवश्य कर सकती हूं। तो यह बहुत अच्छा लगता है और बहुत सुखदायी अनुभव होता है। ये बहुत अच्छा है, जैसे कमल की पंखुड़ियां या कहिए गुलाब की पंखुड़ियां। और ये बहुत सुंदर भावना है। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक कार्यक्रम था, उसमें चर्च के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का यहाँ आना हुआ। वह कह रहा था कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी विश्व को परिवर्तन करने के लिए तैयार हूँ। मेडिटेशन और यह वातावरण, वैसे तो वे लोग हमेशा ही लोगों की सेवा में हाजिर रहते हैं, लेकिन इस मेडिटेशन ने, इस वातावरण ने मुझे बहुत शक्ति दी है कि मैं अब संसार को बदल सकता हूँ। तो सब वातावरण की बात है, हम किस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करते हैं। ऐसा नहीं कि हम स्वर्णिम युग बनाएंगे, लेकिन हम स्वर्णिम युग में हैं और लोगों को अपने आप ही इस बात का एहसास होगा हमारे आसपास के वातावरण से। एरिक भाई, बहुत अच्छा आप बात कर रहे हैं तैयारी करने की, पवित्रता, सुंदरता, सफाई, वातावरण। लेकिन पद के बारे में बताइए, जब बाबा कहते हैं कि आपको उच्च पद पाना है, क्या यह बात आपकी समझ में आती है? क्या इस बारे में आपने कुछ चिंतन किया है, मंथन किया है? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? चंद्र बहन, वास्तव में इस बारे में मैंने कोई मंथन नहीं किया है, पर मुझे पूरे ब्राह्मण जीवन के दौरान का अनुभव और समझ है। आपको अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, आपके कर्म कैसे हैं, आपके अंदर की आध्यात्मिकता कैसी है, उससे अपने आप ही आपको फल मिलता है। मैं व्यक्तिगत रूप से कोई महाराजा के लिए पुरुषार्थ नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आप लायक हैं तो अपने आप ही आप वह बन जाएंगे और उसके साथ तालमेल बिठाने लगेंगे और ड्रामा अनुसार और परिस्थितियां भी ऐसे ही बनेंगी कि आप अपने आप ही उस सीट पर बैठ जाएंगे और निसंदेह आपको अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी है। जब हम छोटे थे तो सुनते थे कि अगर आप नंबर एक पर आने का पुरुषार्थ करते हैं तो नंबर आठ तक आ पाएंगे या फिर त्रेता युग में आएंगे, तो हमेशा ही सोचना है मैं एक स्वर्णिम युग की आत्मा हूँ और अगर मैं एक नंबर में नहीं आती हूँ, नंबर एक महाराजा नहीं बनती हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऊंची श्रेणी का पुरुषार्थ करना है। जैसे स्कूल में नंबर एक पर आने के लिए, अच्छी ग्रेड हासिल करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि जो आपने सोचा है आप वही पाएं। कभी नंबर एक, कभी नंबर दो, लेकिन आप नंबर दो के लिए कोशिश नहीं करते हैं। अगर आप नंबर दो या तीन के लिए कोशिश करते हैं तो आप नंबर एक पर कभी नहीं आ पाएंगे। इस प्रकार हम ओहदा हासिल करते हैं और अगर मैं लायक बनती हूँ तो अपने आप ही मुझे चुना जाएगा। मुझे नहीं मालूम कि स्वर्णिम युग में कैसे चुना जाता है, आप एक राजा के पास जन्म लेंगे या आपको चुना जाएगा। जैसे अभी ज्ञान में या सेवा में या सेंटर्स पर, कोई खास सेवा करने से आप सेंटर इंचार्ज नहीं बनते, बस आपको सेवा करते जाना है और इसके आधार पर आपको और सेवाएं मिलती रहेंगी। फिर किसी एक विशेष सेवा केंद्र के लिए जिम्मेवार बनाया जाता है, फिर और सेंटर्स खुलते जाते हैं, तो धीरे धीरे और जिम्मेवारियां बढ़ती जाती हैं। आप और अधिक सेवा या और अधिक सेंटर्स इसलिए नहीं करते कि आपको बड़ा बनना है या महारथी बनना है, लेकिन पुरुषार्थ करने से आप बड़ा बनते हैं, महारथी बनते हैं। क्या आप समझ रहे हैं?
By making effort, you become big Maharathi. Does that make
sense? Eric bhai, हाँ हाँ बिल्कुल। चंद्रु बहन, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि स्वर्णिम युग से जुड़ा हुआ कौन सा मूल्य आपको बेहद पसंद है? जब आप नई दुनिया के बारे में सोचते हैं, उस दुनिया के बारे में जो बाबा अपनी हथेली पर हमारे लिए लेकर आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा मूल्य है या कौन सा ऐसा गुण है जो आपको उस युग में सबसे ज्यादा आकर्षित करता है? चंद्रु बहन, व्यक्तिगत रूप से मुझे पवित्रता आकर्षित करती है, सुंदरता आकर्षित करती है और यह बात कि हम किसी में नकारात्मकता नहीं देखते, यह बात मुझे बहुत आकर्षित करती है। आप बिल्कुल भोले भाले बन जाते हैं, सादगी से भरपूर बन जाते हैं, बिल्कुल पवित्र बन जाते हैं एरिक भाई। लेकिन ये तो बहुत आसान होगा स्वर्णिम युग में, क्योंकि किसी में कोई नकारात्मकता है ही नहीं, तो किसी में कोई गलती देखने का सवाल ही नहीं है। चंद्रु बहन, लेकिन अगर आप वह स्वभाव अभी उन्नत करते हैं तभी आप स्वर्णिम युग में जाएंगे एरिक भाई। हाँ हाँ बिल्कुल सही, उस गुण का विकास हमें यही करना होगा। चंद्रु बहन, अगर आप में यहाँ वह गुण नहीं है तो वहाँ भी नहीं होगा, और अगर मैं पर्याप्त पवित्र नहीं हूँ तो मैं वहाँ नहीं जा सकती। ऐसा नहीं है कि जब हम स्वर्णिम युग में पहुँच जाएंगे तब पवित्र, बहुत अच्छे और सकारात्मक बन जाएंगे। मेरी आत्मा को वैसा यहाँ बनना होगा। जैसा कि आपने पहले सवाल पूछा था कि स्वर्णिम युग में जाने के लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं, तो यही तैयारी है स्वर्णिम युग के स्वभाव को अपने अंदर समाहित करने की। पवित्रता, सादगी, देह अभिमान से परे जाना, यही सब बातें जो हम सब जानते हैं एरिक भाई। क्या आप हमें मेडिटेशन कमेंट्री के माध्यम से उस स्वर्णिम युग की सैर करवा सकते हैं? जिन विचारों को आपने प्रकट किया उन विचारों को ध्यान के माध्यम से हमें महसूस करवा सकते हैं? चंद्रु बहन, हाँ अवश्य। ओम शांति। चलिए ऐसे विचारों को उत्पन्न करते हैं जो हमें बदलाव की ओर ले जाएंगे। कलयुग नहीं, संगम युग भी नहीं, लेकिन इससे भी अगला युग जिसको हम सोचते हैं, जिसको हम विजुअलाइज करते हैं, मैं आत्मा स्वर्ण युग में हूँ, मैं पवित्र हूँ, संपूर्ण हूँ, मैं मुस्कुरा रही हूँ, मैं आनंदित हो रही हूँ। यह प्रासंगिक नहीं है, यह प्राकृतिक है कि मैं एक बहुत सुंदर और पवित्र वातावरण में हूँ। सुंदर पंछी, पहाड़ और पेड़, नदियां बह रही हैं, संगीत चल रहा है और मैं बांसुरी की धुन सुन रही हूँ। मेरे पैरों में कुछ हलचल होती है और मैं फूलों के चारों ओर नृत्य करना आरंभ कर देती हूँ। बहुत से सुंदर लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने बहुत सुंदर चमकीले परिधान पहने हुए हैं और अलंकार धारण किए हुए हैं। बहुत सुंदर पवित्र लोग हैं जिनमें एक दूसरे के लिए प्रेम है। और मैं देखती हूँ किसी प्रकार की खराबी उस दुनिया में नहीं है और मैं अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ। संपूर्ण शांति, संपूर्ण पवित्रता और आनंद। और मैं देखती हूँ 36 प्रकार का वैरायटी भोजन मेरे सामने आ जाता है। मैं उसका आनंद ले रही हूँ, मिठास का अनुभव कर रही हूँ, फलों के प्राकृतिक स्वाद का आनंद ले रही हूँ। इस प्रकार के स्वाद का अनुभव मैंने पहले कभी नहीं किया। शुभी रस, अमृत जो कि मेरे शरीर को पोषण दे रहा है, जो कि मेरी आंतरिक और बाहरी सुंदरता को बढ़ाता है, पवित्रता को बढ़ाता है और मेरा संपूर्ण स्वास्थ्य अच्छा रहता है। संपूर्ण स्वास्थ्य और संपूर्ण खुशी, निसंदेह वहां बहुत धन है। बड़े हो रहे हैं, बहुत सारे मित्र बन रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं और वहां चित्रकारी कर रहे हैं, कलाकारी सीख रहे हैं और जीवन के प्रति पल का संपूर्ण आनंद ले रहे हैं। मैं स्वर्णिम दुनिया में हूं, मैं आनंद ले रही हूं। ओम शांति
शांति
शांति शांति। एरिक भाई, ओम शांति चंद्र बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।